का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जुनैद की लिखी कहानी फितूर। आपके कान पर जू नहीं रेंगती, नेहा पूरे 25 साल की हो गई है, उसकी शादी ब्याह करवाना भी है या नहीं? अरे मैं तो कल ही उसके हाथ पीले करवा दूं, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता टकराए तो सही। ओम बाबू ने अखबार पढ़ते पढ़ते निरूपा अर्थात अपनी पत्नी से ऊप के ये जुमला कहा, तभी ओम बाबू के हाथ से अखबार लेकर दूर फेंक कर, पापा क्या मैं अब आप पर बोझ बन गई हूं? आप ही तो कहते थे कि मैं तुझे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, तो फिर ये ढंग वंग का रिश्ता क्या है? ओम बाबू ने सोफे पर बैठे बैठे सामने खड़ी नेहा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचा और सोफे में ठीक अपने बगल में बैठाकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर उससे कहा, लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे लिए कोई प्यारा सा गुड्डा तो खोजना ही पड़ेगा ना, कल जब हम नहीं रहेंगे तो। बस पापा प्लीज। एकदम से सैलाब उतर आया नेहा की आंखों में और अपने पापा के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी, लेकिन कोई देख नहीं सकता था कि उससे ज्यादा आंसू ओम बाबू की आंखों में थे, बल्कि उनके तो होंठ भी एक अनजानी पीड़ा से कांपने लगे। बाप बेटी का ये विलाप और स्नेह देख निरूपा भी रो पड़ी और अपनी आंख के आंसू पोंछकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोली, चलो बाप बेटी नाश्ता कर लो, वरना घर में बाढ़ आ जाएगी और बेचारी मम्मी के पास छाता तो है लेकिन नाव नहीं है। सब खिलखिलाकर हंसे और नेहा ने ब्रेकफास्ट करके कॉलेज की राह ली। गलियों से होते हुए वो एक सुनसान सड़क पर पहुंची, तभी नेहा, सुनो नेहा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है रघु कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन नेहा मैंने अब सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, प्लीज यकीन करो मेरा, बल्कि अब तो मैं एक गैराज चलाता हूं लक्ष्मी नगर में। चाहते हो कि नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, प्लीज लीव मी अलोन। तभी अर्जुन की बाइक आती दिखी और उसने ठीक मेरे सामने बाइक रोकी और बोला, क्या हुआ नेहा, बोलो क्या बोल रहा था ये? नेहा कुछ नहीं बोली, बल्कि नफरत से रघु को देखकर फिर उससे मुंह फेर लिया। अर्जुन सारा मामला समझ गया और बाइक स्टैंड पर लगाकर, क्यों बे झोपड़ी के साले, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है बेटा, जानता है मुझे, सेक्रेटरी हूं एमजे कॉलेज का, समझा, फिर अब निकल यहां से, निकल यहां से, वरना पैरों पर घर वापस नहीं जा पाएगा। रघु ने मेरी तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने रास्ते लौटने लगा। चलो नेहा, वी आर गेटिंग लेट। वैसे कौन था ये? रघु, रघु राइफल। क्या? ओ तेरी, अरे मेरी लंका लगा दी तुमने, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पहले क्यों नहीं बताया यार कि वो रघु भाई है, अब क्या होगा? टेक इट इजी अर्जुन, उसने हर बुरा काम छोड़ दिया है अब। मैं बाइक में अर्जुन के पीछे बैठ गई और अर्जुन के कंधे पर हाथ रख लिया, लेकिन अर्जुन के शरीर में अब भी एक कपकपी मैं महसूस कर सकती थी। वो अच्छी तरह जानता था कि रघु सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पूरा काल का प्रतिरूप है, लेकिन अर्जुन मुझे पसंद था और वो भी मुझे पसंद करता था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे और अब इस रिश्ते को एक मंजिल देना चाहते थे। रात को कुछ डरते कुछ शर्माते हुए मैंने पापा को अर्जुन के बारे में बताया। मम्मी खुशी से झूम उठी और मैं पापा से नजरें ना मिला सकी, बल्कि सीधे उनकी बाहों में समा गई। पापा के दिल की धड़कनें तेज थीं, जो शायद मुझसे कह रही थी कि बेटा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगले दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो पता चला कि आज सुबह जब अर्जुन जॉगिंग में गया था तो किसी ने उसके सर पर लोहे की रॉड मार दी। वो जेजे हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं जेजे हॉस्पिटल से पहले पुलिस स्टेशन गई और रघु के खिलाफ कंप्लेन की। पुलिस सीधे मुझे जीप में बैठाकर रघु के गैरेज ले गई। रघु भाई, मतलब रघु, कल रात आप कहाँ थे? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, और नेहा तुम सब ठीक तो है? नेहा ने करारा तमाचा रघु के मुंह पर मारा। तभी तेरी माँ का भाई के ऊपर हाथ उठाती है, साली यहीं ठोक दूंगा। अब तमाचा रघु ने मारा, वो भी अपने हेल्पर को, और फिर पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, क्या बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? इनका कहना है कि तुमने इनके बॉयफ्रेंड अर्जुन सिंह पर जानलेवा हमला किया है, क्योंकि कल वो आपसे उलझा था। इंस्पेक्टर साहब, कल मैं दिल्ली गया था गैराज का सामान लेने, ये देखिए बस के टिकट, चाहे तो कंडक्टर मिश्रा से पूछ लीजिए, और अभी 15 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच रहा हूँ। पुलिस ने तफ्तीश की और रघु के डर से बस कंडक्टर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रघु अपने वक्त का सबसे शातिर गुंडा था, इसलिए उसने बस के टिकट से लेकर सब जगह पहले ही अपने पत्ते फिट किए हुए थे, ताकि वह जुर्म करने के बाद साफ साफ बच निकले। मैं रोती तड़पती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। एक पापा ही थे जिनको मुझ पर विश्वास था, लेकिन फिर मुझे सुकून मिला क्योंकि अर्जुन रिकवर हो रहा था, मैं उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन जब अर्जुन ने आंखें खोली तो झूम कर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी अर्जुन ने मुझसे मुंह फेर लिया और उसकी मम्मी बोली, नेहा प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन अब अर्जुन से मिलना छोड़ दो, अर्जुन को हमेशा के लिए छोड़ दो, वरना फिर इसकी जान परा बनेगी। मैं सकते में थी, लेकिन अर्जुन भी यही चाहता था, उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जैसे ही मैं रोते रोते अस्पताल से बाहर निकली, सामने रघु खड़ा दिखाई दिया। सुनो नेहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने अर्जुन पर हमला नहीं किया, वो तो दफा हो जाओ यो गुंडे। मैं रोते हुए अपने घर को दौड़ पड़ी, कमरा बंद कर मुंह तकिए में रखकर सिर्फ रोती रही। रात को पापा ने अपनी कसम देकर मुझसे दरवाजा खुलवाया, और फिर वो रात भर मुझे अपने सीने से लगाकर हिम्मत देते रहे। इस दुनिया में मर्द कहने को सिर्फ पापा ही थे जो मुझे समझते थे, मेरी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इस ब्रेकअप के बाद मुझे सहारा मिला रणवीर का, जो अर्जुन का दोस्त था, और धीरे धीरे उसकी दोस्ती ने मुझे गहरे सदमे से बाहर निकाला। एक दिन शाम को जब मैं और रणवीर नीलम पार्क के बाहर ठेली पर पानी पूरी खा रहे थे, तभी भाई कोई हमें भी इनवाइट करेगा या नहीं, पीछे पलट कर देखा, पापा पीछे खड़े मुस्करा रहे थे, और उनके पीछे खड़ा वो चेहरा जिसे देखकर मेरी खुशी डर में बदल गई, रघु जो हमें देख रहा था। तभी वो आगे बढ़कर भीड़ में खो गया। क्या हुआ बेटा बोलो? ओ नो पापा, लीव इट, कुछ नहीं, इनसे मिलो, रणवीर माय फ्रेंड। पापा ने रणवीर से हैंडशेक किया, और एक झटके में रणवीर बोला, अंकल मैं यहीं आपसे नेहा का हाथ मांगता हूँ, प्लीज़ आप मना मत करना, आई लव नेहा। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार ना थी, रणवीर अभी सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन तभी पापा हंसते हुए बोले, ओके बाबा, जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? बेटा रणवीर, मैं आपके माता पिता से मिलना चाहूँगा। ओह थैंक्स अंकल, नेक्स्ट वीकेंड पे मैं उनको लेकर आपके घर आता हूँ। लेकिन सिर्फ 3 दिन लगे जब पूरा मंजर ही बदल गया। अब हॉस्पिटल के जिस बेड पर जहाँ अर्जुन था, वहाँ रणवीर था। रघु ने उसको भी नहीं छोड़ा, और मैं जानती थी वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं जो मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मुझे स्कूल के वक्त से चाहता है, और स्कूल में मुझे छेड़ने वाले एक लड़के के सर पर उसने ऐसे ही रॉड मारी थी। उसके बाद रघु स्कूल से निकाला गया, और उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। मेरी रातों की नींद उड़ गई, मैं डिप्रेशन में जाने लगी। पापा ने मुझे साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। पापा का प्यार फिर मुझे अंधेरी दुनिया में दमन होने से वापस ले आया। एक दिन, सुनो जी, मैं श्रीवास्तव जी के बेटे से नेहा की शादी पक्की करवा रही हूँ, मैं इसको इस हाल में हरगिज नहीं देख सकती। शाम को श्रीवास्तव अंकल परिवार के संग मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन दिन में मम्मी सीढ़ियों से गिर पड़ी और उनके सर पर चोट लग गई। हर कदम पर दुख हमारा भाग्य बन गया। पापा फूट फूट कर रोने लगे और मैं समझ गई कि इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। पापा मम्मी के साथ अस्पताल में थे तो मैं कुछ जरूरी सामान लेने घर आई। बेडशीट को निकालने के लिए जैसे ही मैंने अलमारी खोलनी चाही तो देखा अलमारी में लॉक लगा है। सभी जरूरी चाबी मम्मी के पास रहती है जो मुझे मिल नहीं रही थी। मैं सीधे पापा के कमरे में गई क्योंकि घर के सभी कमरों के लॉक्स की सेकंड की उन्हीं के कमरे में होती है। मैंने उनके कमरे की अलमारी खोली और फिर जो मैंने देखा तो मेरी घिक्की बंद गई। सामने एक लोहे की रॉड थी जिस पर खून लगा था। मैं सकपका गई। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पापा ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है किसने ये रॉड पापा की अलमारी में रख दी हो, लेकिन कौन कर सकता है? रखू, सिर्फ रखू। मैं सीधे वो रॉड लेकर रघु के गैरेज को निकली। रघु किसी गाड़ी की मरम्मत कर रहा था। मैंने वो रॉड उसके आगे फेंक दी और लो अपनी अमानत जो तुम मेरे पापा की अलमारी में चोरों की तरह रखकर आए हो। रघु ने औजार जमीन पर रखे और जेब से मोबाइल निकाला और बोला, लेकिन तुम अपने पापा का ये अपराध किसको सौंपोगे? रघु ने एक वीडियो क्लिप ले की। उसमें साफ साफ मेरे पापा रणवीर के सर पर रॉड मारते नजर आ रहे थे। मैं होश खोने लगी। मैंने रघु के हाथ से वो मोबाइल छीना, उसे बार बार प्ले करके देखा। वो पापा ही थे। मैं घुटनों पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर बोली, तो तुमने ये क्लिप पुलिस को क्यों नहीं दी? क्यों अब तक मेरी नफरत और ये आरोप सहन कर रहे थे? प्यार करता हूं तुमसे, तब से जब प्यार का मतलब तक नहीं पता था। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है नेहा। मेरे एक पंटर ने बताया था कि उसने जॉगिंग के वक्त अर्जुन के सर पर रॉड मारते हुए तुम्हारे पापा को देखा था। इसलिए जिस दिन मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे और रणवीर के साथ साथ पानी पूरी खाते हुए देखा, मैं समझ गया तुम्हारे पापा का अगला शिकार रणवीर होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकते नेहा। रघु ठीक कह रहा था। पापा ने सब कबूल कर लिया। मम्मी को सीढ़ियों से धक्का भी उन्होंने दिया था, लेकिन रघु के कहने पर हमने पापा की पुलिस कंप्लेंट नहीं की, बल्कि पापा को सीधे बैंगलोर ले गए और साइकेट्रिस्ट ने बताया। मेडिकल साइंस इसे कुछ भी कहे, लेकिन मनोविज्ञान के पास इसकी एक परिभाषा है। आसान शब्दों में इस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया या सिज़ोफ्रेनिया, और इसका अंतिम चरण है सीवियर वायलेंस, जो हिंसा की अनुमति देता है। इसमें इंसान किसी भी चीज के लिए पजेसिव हो सकता है, अपनी कार, मोबाइल, जूते, और इनको उसके बिना आज्ञा के टच करने पर वो गुस्से से पागल हो सकता है। ये बीमारी अमूमन शक या वहम पर निर्भर है। जब इंसान को लगे कि उसकी सबसे कीमती चीज खो जाएगी या उसको कोई छीन लेगा, तो वो इंसान उस व्यक्ति की जान का दुश्मन भी बन जाता है। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। कोई और तुम्हें प्रेम करे ये वो देख ही नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ एक बीमारी है, ये ठीक हो सकती है। अगर किसी तरह पेशेंट को ये विश्वास दिला दिया जाए कि जो उसका है वो किसी और का हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो उसके पास हो या उससे दूर। पापा ठीक हो रहे हैं और वह खुद के किए पर बेहद शर्मिंदा भी हैं, लेकिन मुझे फक्र है कि मुझे जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो वो इंसान मिले हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, जो इस पूरी दुनिया में मुझसे, सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। एक मेरे पापा और दूसरा मेरा प्यार रखू। अभी आप सुन रहे थे जुनैद की लिखी कहानी फितूर। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी ने।